ओम शांति।
ओम शांति।
2968 का प्रातः क्लास चल रहा था।
द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 2968 वॉज गोइंग ऑन।
तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी।
द टॉपिक बींग डिस्कस्ड इन द मिडल ऑफ द थर्ड पेज वॉज।
बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ।
द फादर सेज आई स्पीक टू यू सोल्स।
जो आत्म की स्थिति में रहने वाले हैं, देवान की स्थिति में रहने वाले नहीं।
हु रिमेन इन द सोल कॉन्शियस स्टेज एंड नॉट इन द बॉडी कॉन्शियस स्टेज।
कब? जब मैं आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ और उस आत्म की स्थिति की पढ़ाई में जो पास होते हैं।
When I come and teach the knowledge, the souls who pass in that study of soul consciousness,
अर्थात अंतमते सो गते आत्म की स्थिति में रहते हैं, मैं उन आत्माओं से बात करता हूँ।
Meaning, those who remain in the soul conscious stage as per the law, as are the thoughts in the end, so is the destination, I speak to those souls.
अर्थात मैं आत्माओं का बाप हूँ।
It means, I am the father of the souls.
तो सब बच्चे एक साथ पैदा हुए होंगे या नंबर वार पैदा हुए होंगे?
So, will all the children have been born together or number wise? Meaning, one after the other. Students, number wise. They have been born number wise.
दुनिया भी बच्चे होते हैं, वो तो शरीर के साथ पैदा होते हैं।
The worldly children are born with their bodies anyway.
जैसे बच्चे भी पैदा होंगे तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा।
Even if twins are born, one will be elder and the other will be younger.
और यहाँ तो सब आत्मा रूपी।
And here all the souls are in the form of.
सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा रूपी एक जैसे बच्चे हैं ना?
All the children are alike in the form of subtle point of light souls, aren't they?
तो आगे पीछे पैदा होंगे या एक साथ पैदा होंगे?
Then will they be born one after the other or together? Student, they will be born together.
एक साथ पैदा होंगे।
Will they be born together? Student, they will be born one after the other.
आगे पीछे क्यों होंगे?
Why will they be born one after the other?
आत्मा आत्मा एक जैसी बिंदु।
All the souls are alike, they are points.
कोई छोटी बड़ी आत्मा तो है नहीं?
The soul is not small or big.
और इतनी सूक्ष्म है कि न आँखों से तो क्या, डॉक्टरों के यंत्रों से भी देखी नहीं जा सकती।
And it is so subtle that it is invisible not only to these naked eyes, but even to the medical instruments.
तो एक साथ पैदा होने में क्या मुसीबत आती है?
जन्म मरण के चक्कर में आती है ना?
So what is the problem in being born together? Student, they come in the cycle of birth and death, don't they?
वो तो सभी आते हैं।
Everyone does come in that cycle.
जो दो जन्म लेंगे, कम जन्म लेंगे, वो सात जन्म मरण के चक्र में आते हैं।
Those who have two births or fewer births, all of them come in the cycle of birth and death.
नंबर वार क्यों?
Student, they have faith and doubt number wise. Why number wise?
क्योंकि part number वार भरा हुआ है।
It is because they have number wise roles, more or less elevated according to the deeds performed contained in them.
एक जैसा record जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले हैं last paper में।
The same kind of record the souls who stabilize in the soul conscious stage in the last paper, that is examination,
उनमें भी नंबर वार रिकॉर्ड भरा हुआ है, एक जैसा पार्ट नहीं भरा हुआ है।
even they have the record recorded in them according to the roles played. They don't have the same roles recorded in them.
तो जिनमें सबसे जास्ती पार्ट भरा हुआ है वो भी नंबर वन.
So the ones who have the greatest number of roles recorded in them, they too are number one, ranked according to the number of roles filled in them.
और जो अव्वल नंबर पार्टधारी होगा वो तो हीरो पार्टधारी हुआ.
And the number one actor is certainly the hero actor.
वो आत्म की स्थिति में पहले टिकेगा या दूसरी आत्मा पहले टिकेगी?
Will he become stable in the soul conscious stage first, or will the other souls become stable first? Student, the one who is number one.
इसका मतलब ये हुआ कि जितना लंबा पार्ट उतना पहले प्रत्यक्ष होने वाली पावरफुल आत्मा है.
This means that the longer the role someone plays, he is a powerful soul who is revealed first to that extent.
और जब बाप आते हैं तो बाप के सन्मुख पार्ट बजाने वाली.
And when the father comes, those who play a role in front of the father,
सन्मुख अनुभव करने वाली, उन आत्म की स्थिति में स्थिर रहने वाली आत्माओं की संख्या कितनी है?
Those who experience themselves to be in front of the father, what is the number of those souls who remain stable in the soul conscious stage?
4.5 lakh.
4.5 lakh, that is 450,000.
4.5 lakh ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर के साथ पढ़ाई पढ़ती हैं बाप के सन्मुख बैठकर.
The 4.5 lakh souls are such who study with their body sitting in front of the father.
और बाप के सन्मुख ही फाइनल पेपर में आत्मिक स्थिति में पास होकर दिखाती है.
And present an example by passing in the final exam, the soul conscious stage in front of the father himself.
कोई पहले पास होते हैं, कोई बाद में पास होते
हैं. Some pass before, some pass later.
तो मैं आत्माओं का बाप हूँ.
So I am the father of the souls.
जो आत्मिक स्थिति में नहीं टिक पाते हैं या परसेंटेज में टिक पाते हैं तो थोड़ा बहुत देह बन रह जाता है.
Those who are unable to become stable in the soul conscious stage or are able to become stable to some percentage, body consciousness remains in them to some extent.
उनका बाप नहीं.
I am not their father.
आत्मिक स्थिति में जो पास होने वाले हैं उनका ही बाप हूँ.
I am the father of only those who pass to attain the soul conscious stage.
और नंबर वन राजाई भी देता हूँ.
And I also give them kingship according to their rank. नंबर वन.
छोटे बच्चों को पहले वर्षा मिलता है या बड़े बच्चे को?
Do the younger children receive the inheritance first, or does the elder child receive it?
बड़े बच्चे को पहले वर्षा मिलता है.
The elder child receives the inheritance first.
जिसको तुम याद करते आए हो हे बाबा आओ हमको सुखधाम ले चलो.
The one whom you have been remembering, O Baba, come and take us to the abode of happiness.
कब से याद करते आए?
Since when have you been remembering him?
द्वापर युग के पहले जन्म से ही याद करते आए हो.
You have been remembering him since the first birth of the copper age itself.
बना टोटल 63 जन्मों से तुम याद करते आए हो.
It means you have been remembering him for 63 births in total.
कि हमको सुखधाम ले चलो.
Saying, take us to the abode of happiness.
सुखधाम का वर्षा याद आता है.
You remember the inheritance of the abode of happiness.
कहते रहे दुख हरो और सुख दो.
यू केप्ट सेइंग रिमूव अवर सोरो एंड गिव अस हैप्पीनेस.
कलयुग में होते हैं दुख.
देयर इज सोरो इन द आयरन एज.
परसेंटेज दुखों की ज्यादा है और सुखों की कम.
द परसेंटेज ऑफ सोरो इज ग्रेटर एंड द परसेंटेज ऑफ हैप्पीनेस इज स्मॉलर.
तो कहेंगे कलयुग है टोटली दुखधाम.
सो इट विल बी सेड द आयरन एज इज कम्प्लीटली द अबोड ऑफ सोरो.
बात समझाते हैं. तुम काम शिक्षा पर बैठ काले तमो प्रधान बन पड़े हो.
द फादर एक्सप्लेन्स बाय सिटिंग ऑन द पायर ऑफ लस्ट यू हैव बिकम डार्क एंड तमो प्रधान.
अब क्या करो.
सो वॉट शुड यू डू नाउ.
क्या करो. ज्ञान क्या है.
वॉट शुड यू डू स्टूडेंट. नॉलेज. वॉट इज नॉलेज.
काम माने कामना. इच्छा.
काम मीन्स डिजायर विश.
इच्छाएं बढ़ती गई तो काले बनते गए.
वेन द डिजायर्स इंक्रीज्ड वी बिकेम डार्क.
तो अब क्या करें.
सो वॉट शुड वी डू नाउ.
इच्छा मात्रम अविद्या. मैं आत्मा.
वी शुड बिकम इच्छा मात्रम अविद्या. आई एम अ सोल. इच्छा मात्रम अविद्या मीनिंग विदाउट अ ट्रेस ऑफ द नॉलेज ऑफ डिजायर.
आत्म की स्टेज में स्थिर हो जाएंगे तो कहाँ के वासी हो गए.
वेन यू स्टेबिलाईज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज यू बिकम अ रेजिडेंट ऑफ विच प्लेस.
परम धाम वासी हो गए.
यू हैव बिकम द रेजिडेंट ऑफ द सुप्रीम अबोर्ड.
परम धाम में फिर कोई भी इच्छा होती नहीं.
देन देर इज नो डिजायर इन द सुप्रीम अबोर्ड एट ऑल.
इच्छा मात्रम अविद्या.
यू आर इन द स्टेज ऑफ इच्छा मात्रम अविद्या.
थोड़ी भी इच्छा होती है तो कहेंगे काम की इच्छा.
इवन इफ यू हैव अ लिटिल डिजायर इट विल बी सेट टू बी द पायर ऑफ लस्ट.
अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है.
नाउ यू हैव टू बिकम सतो प्रधान फ्रॉम तमो प्रधान.
अभी मैं आया हूँ तुमको काम शिक्षा से उतार कर ज्ञान शिक्षा पर बैठाने के लिए.
नाउ आई हैव कम टू टेक यू अवे फ्रॉम द पायर ऑफ लस्ट एंड सिट यू ऑन द पायर ऑफ नॉलेज.
ज्ञान क्या है. अज्ञान क्या है.
वॉट इज नॉलेज. वॉट इज इग्नोरेंस.
ज्ञान है जानकारी.
नॉलेज इज इन्फॉर्मेशन.
काय की जानकारी.
इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट.
सत्य की जानकारी.
इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रूथ.
सत्य क्या है असत्य क्या है.
वॉट इज ट्रूथ एंड वॉट इज फॉल्स.
जो सत्य है वो सदा काल सत्य है.
द वन हु इज ट्रू फॉर एवर.
और जो असत्य है वो कभी है और कभी नहीं है.
एंड द वन हु इज फॉल्स समटाइम्स इज समटाइम्स इजंट.
इसका मतलब इस सत्य रूपी रंगमंच पर जिसका ऑलराउंड पार्ट है.
दिस मीन्स दैट द वन हु हैज एन ऑलराउंड रोल ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड.
वो ही उतना ही ज्यादा परसेंटेज में सत्य है.
ही हिमसेल्फ इज ट्रू टू दैट एक्सटेंट.
और जिसका कम पार्ट है उतना ही झूठ है.
एंड द वन हु हैज फ्यूअर रोल्स ही इज फॉल्स टू दैट एक्सटेंट.
कलयुग में जन्म होगा.
इफ समवन इज बॉर्न इन द आयरन एज.
तो जिसका कल में जन्म ही झूठ करने में है तो सारा जीवन कैसा होगा.
सो द वन हुज बर्थ इटसेल्फ इज इन द लैंड ऑफ फॉल्सहुड हाउ विल हिज एंटायर लाइफ बी.
झूठ ही झूठ होगा.
इट विल बी फॉल्स एंड ओनली फॉल्स थ्रू आउट.
जिसका जन्म ही सत्य युग में है.
द वन हुज वेरी बर्थ इज इन द एज ऑफ ट्रूथ सत्युग.
उसका सारा जीवन सारा पार्ट जन्म जन्मांतर का सत्य ही होगा.
हिज एंटायर लाइफ ऑल द रोल्स ऑफ मेनी बर्थ्स विल बी ओनली ट्रू.
फिर भी कहेंगे परसेंटेज.
इवन देन इट विल बी सेट टू बी विद अ परसेंटेज.
तो मैं सत्य की जानकारी देता हूँ.
सो आई गिव यू द इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रूथ.
एक सत्य है सारी मनुष्य शक्ति का बीज.
वन ट्रूथ इज द सीड ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड.
और उससे भी ज्यादा सत्य क्या है.
एंड हु इज ट्रूअर देन हिम.
जो सदाशिव कहा जाता है.
इट इज द वन हु इज कॉल्ड सदाशिव मीनिंग फॉर एवर बेनिफिशियल.
जो सदाशिव कहा जाता है वो कौन है.
हु इज द वन हु इज कॉल्ड सदाशिव.
एक सेकंड मात्र के लिए भी कभी असत्य नहीं होता.
ही नेवर बिकम्स फॉल्स इवन फॉर अ सेकंड.
वो सदा ही परमधाम वासी है.
ही इज द रेजिडेंट ऑफ द सुप्रीम अबोर्ड फॉर एवर.
सदा ही अभोक्ता है.
ही इज फॉर एवर अभोक्ता मीनिंग द वन हु डज नॉट सीक प्लेजर.
उसके लिए कहेंगे सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या.
इट विल बी सेट फॉर हिम दैट ही इज फॉर एवर इच्छा मात्रम अविद्या.
किसके लिए.
फॉर होम.
इस शक्ति पर पार्ट बजाने वाला ऐसा कौन है जो सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या है.
हु इज सच एन एक्टर इन दिस वर्ल्ड हु इज ऑलवेज इच्छा मात्रम अविद्या.
कोई है.
इज देर एनी वन.
अरे भूल गए शिव.
अरे डिड यू फॉरगेट शिव.
अरे जो सदा ही सत्य है उसी को भूल गए.
अरे यू फॉरगॉट द वेरी वन हु इज ट्रू फॉर एवर.
है सी भी सत्य.
ही इज ट्रू.
सिख लोग क्या कहते हैं. है सी भी सत्य हो सी भी सत्य.
वॉट डू द सिक्स से. ही इज ट्रू. ही विल बी ट्रू इन फ्यूचर. है सी भी सत हो सी भी सत.
और सत्य ही था.
एंड ही वॉज ट्रू बिफोर टू.
अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ.
द इंग्लिश पीपल ऑल्सो से गॉड इज ट्रूथ.
एक भगवान ही है जो सदैव सच्चा है.
इट इज ओनली द वन गॉड हु इज ऑलवेज ट्रू.
तो उसकी जानकारी ही असली ज्ञान है.
सो द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम प्रिसाइसली इज द ट्रू नॉलेज.
अगर उसकी जानकारी नहीं और सारी दुनिया के अणु अणु की जानकारी है.
इफ समवन डजंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम बट हैज द इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी एटम ऑफ द एंटायर वर्ल्ड.
तो ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे.
विल ही बी कॉल्ड नॉलेजेबल और इग्नोरेंट. Everyone said he will be called ignorant.
तो भी कहेंगे अज्ञानी.
Even then he will be called ignorant.
तो मैं ज्ञान की इच्छा पर बैठाने आया हूँ अर्थात मैं अपनी भी पहचान देता हूँ और रचना की भी पहचान देता हूँ.
So I have come to sit you on the pyre of knowledge, meaning I give you my identification as well as the identification of the creation.
ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से तुम अभी संगम युग में पवित्र बन करके स्वर्ग में चले जाओगे.
बाय ऑब्टेनिंग सच नॉलेज यू विल बिकम प्योर इन द कॉन्फ्लुएंस एज नाउ एंड गो टू हेवन.
आत्मा कैसे पवित्र बनेगी.
हाउ विल द सोल बिकम प्योर.
ज्ञान से.
थ्रू नॉलेज.
सच्चाई की जानकारी से पवित्र बनती है.
इट बिकम्स प्योर थ्रू द नॉलेज ऑफ ट्रूथ.
ज्ञान को जल कहा जाता है.
नॉलेज इज कॉल्ड वॉटर.
जितनी आत्मा पवित्र बनेगी उतना ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग का अनुभव कर सकेंगे.
द प्योरर द सोल बिकम्स यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस द हाईएस्ट हेवन टू दैट एक्सटेंट.
इसके लिए बाप को याद करना है.
फॉर दिस यू शुड रिमेम्बर द फादर.
सच्चाई कशिश करती है ना.
ट्रूथ अट्रैक्ट डजंट इट.
कितना भी झूठा आदमी हो.
नो मैटर हाउ बिग अ लायर समवन इज.
फिर भी अंदर से कहीं न कहीं वो सत्य को पसंद करेगा या झूठ को पसंद करेगा.
स्टिल फ्रॉम विद इन विल ही लाइक ट्रूथ टू सम एक्सटेंट और विल ही लाइक फॉल्सहुड.
अंदर से जरूर उसकी चाहना होगी सच्चाई की तरफ, बुद्धि मुड़ती जरूर होगी.
ही विल सर्टनली हैव दिस डिजायर फ्रॉम विद इन, हिज इंटेलेक्ट विल डेफिनेटली टर्न टूवर्ड्स ट्रूथ.
तो बाप सबको कोशिश करते हैं.
सो द फादर अट्रैक्ट एवरीवन.
बाप अर्थात सब आत्माओं का बाप, गॉड फादर.
द फादर मीन्स द फादर ऑफ ऑल द सोल्स, गॉड द फादर.
बाप के पास युगल आते हैं.
कपल्स कम टू द फादर.
युगल में दो हैं.
देर आर टू पीपल इन अ कपल.
युगल कहो, पेयर कहो.
कॉल इट अ कपल और अ पेयर.
दो में से एक को कशिश होती है और एक को कशिश नहीं होती है.
बिटवीन द टू वन इज अट्रैक्टेड टू द फादर वाइल द अदर इजंट.
पुरुष ने फट से कह दिया हम तो अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे.
द हस्बैंड सेड इमीडिएटली आई विल रिमेन प्योर इन द लास्ट बर्थ.
काम शिक्षा पर अब हम नहीं चढ़ेंगे.
आई विल नॉट स्टेप ऑन द पायर ऑफ लस्ट नाउ.
ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुष को पक्का निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि जीवन भर कभी भी काम शिक्षा पर नहीं चढ़ेगा.
इट वॉन्ट बी सेट दैट द हस्बैंड हैज सच फर्म फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ दैट थ्रू आउट हिज लाइफ ही विल नेवर स्टेप ऑन द पायर ऑफ लस्ट.
निश्चय अगर होता तो वेद के पाप को चिट्ठी लिखता रहता.
इफ ही हैड फेथ ही वुड हैव कंटिन्यूड टू राइट लेटर्स टू द अनलिमिटेड फादर.
सदैव कनेक्शन में बना रहता.
ही वुड हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ कनेक्शन.
कनेक्शन टूट जाता है इसका मतलब कहीं न कहीं औरों से बुद्धि का कनेक्शन जुट जाता है.
इफ द कनेक्शन ब्रेक्स दिस मीन्स द कनेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड विद अदर्स समवेयर एल्स.
तो निश्चय बुद्धि कहें.
सो कैन वी कॉल हिम द वन विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट. स्टूडेंट नो.
सुना है पवित्र रहते हैं.
बाबा हैज हर्ड दैट दे रिमेन प्योर.
लोगों ने सुनाया.
पीपल सेड सो.
बाप सुनते हैं कि हाँ ये पवित्र रहते हैं.
द फादर हियर्स यस दे रिमेन प्योर.
बाकी बाप तो फिर भी कहेंगे बाप की पहचान कुछ भी नहीं है.
बट द फादर विल स्टिल से दे हैव नो रिकॉग्निशन ऑफ द फादर एट ऑल.
अगर बाप की पूरी पहचान हो जाए, सच्चाई की पूरी पहचान हो जाए.
If they have the complete recognition of the father, the complete recognition of truth,
तो फिर जीवन भर कभी भी बाप को भूल ही नहीं सकते, कनेक्शन तोड़ ही नहीं सकते.
Then they can never forget the father throughout their life at all. They can't break the connection at all.
समझेंगे कि हमें बेहद के बाप से ही वर्षा लेना है.
They will think we have to take the inheritance only from the unlimited father.
बेहद के बाप से ही सुख लेना है.
We have to obtain happiness only from the unlimited father.
इसके लिए मुरली सुननी चाहिए, मुरली पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए.
For this, they should listen to the murli, they should read it and understand it.
वो तो कुछ भी है नहीं.
But there is no such practice in them at all.
नहीं तो बाप तो समझाते हैं मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार.
Otherwise the father does explain, love for the murli means love for the murlidhar, meaning the one who narrates the murli.
न मुरली सुनते हैं, न पढ़ते हैं, न समझते हैं.
They neither listen to the murli, nor do they read it. Nor understand it.
अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते.
They remain busy only in their business, etc.
तो कहेंगे निश्चय बुद्धि.
So will they be called the ones with a faithful intellect?
जरूर कहेंगे अनिश्चय बुद्धि हैं.
Definitely they will be called the ones with a doubting intellect.
बाप की याद कहाँ है?
दे डोंट हैव द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर.
ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए.
यू शुड रिमेम्बर सच फादर अ लॉट.
नहीं तो देखो स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार हो जाता है.
अदरवाइज सी देर इज सो मच लव बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन.
पहला पहला प्यार जब होता है तो कितना अटैचमेंट हो जाता है.
When they fall in love for the first time, they have so much attachment for each other.
एक दूसरे को भूलते ही नहीं.
They don't forget each other at all.
उस प्यार से बाप के प्यार को टैली करो.
Just tally, that is compare the love you have for the father with that love. Student, it is not even 1%.
अपने मुंह से कह रहे 1%.
You are saying it through your own mouth. It is not even 1%.
बाबा बच्चों को ओना देते हैं.
बाबा complains against the children.
पति को कितना याद करती है.
She, that is the wife, remembers her husband so much.
जो पतियों का पति आया हुआ है उस बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए.
You should remember the most that father, the husband of the husbands who has come.
उस पति के साथ तो एक ही संबंध है.
There is only one relationship with that husband.
और इसके साथ सर्व संबंध है.
And with this one, there are all the relationships.
तो भी याद नहीं करते.
Even then you don't remember him.
बाप कितना डरापा देते हैं.
The father complains so much.
नहीं तो गायन है प्यार करे चाहे ठुकराए.
Otherwise there is a song, whether you love me or reject me.
क्या ऐसा प्यार हो कि प्यार करे तो भी प्यार करेंगे.
What? The love should be such, I will love you if you love me.
और ठुकराए तो भी प्यार करेंगे.
And I will love you even if you reject me.
अरे यहाँ बाप ठुकराते कहाँ हैं?
अरे the father doesn't reject you here.
बाप ठुकराते हैं या माया ठुकराती है?
Does the father reject you or does माया reject you?
माया परीक्षा लेती है.
It is माया who tests you.
बाप तो प्यार का सागर है.
But the father is the ocean of love.
बाप कभी मार का सागर नहीं है. हाँ कहते हैं मेरे साथ कौन है.
He is never the ocean of beatings. Yes, he says, who is with me?
धर्मराज है.
धर्मराज meaning the chief justice is with me.
बाकी धर्मराज मार का सागर हो सकता है.
धर्मराज can be the ocean of beatings.
मैं तो फिर भी प्यार का सागर हूँ.
I am still the ocean of love.
बाप कहते हैं हम हाथ कब नहीं छोड़ूंगा.
The father says, I will never leave your hand.
और बच्चे कहते हैं चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए बाबा हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं.
अरे the children say, बाबा whether you love us or reject us, we will never leave you.
लेकिन रिजल्ट क्या होता है? हैं? छोड़ देते.
But what is the result? They leave him.
और बाप भी यही कहते हैं.
And regarding the father, he too says the same thing.
बाप बच्चों का हाथ छोड़ेंगे नहीं, साथ को साथ ले जाऊंगा.
That the father won't leave the hand of the children. He says, I will take everyone along with me.
एक को भी छोड़ूंगा नहीं.
I will not leave even a single soul.
ऐसे नहीं कि यहाँ आकर ही रहना है.
It is not that you have to come and live here itself.
गृहस्थ की जिम्मेवारी है वो छोड़ देना है और बाप के पास आकर बैठ जाना है? नहीं.
It is not that you should leave the responsibilities of the household and come and sit near the father. No.
लौकिक और अलौकिक में तोड़ निभाना है.
You should maintain both लौकिक and अलौकिक relationships. तोड़ निभाना means literally maintain and not break.
अगर छोड़कर आ गए तो फिर संन्यास हो गया.
If you leave the household and come here, it is renunciation.
वहाँ जिम्मेवारी छोड़ेंगे तो क्या गारंटी है यहाँ जिम्मेवारी छोड़ करके नहीं भाग जाएंगे?
If you leave the responsibility there, what is the guarantee that you will not run away leaving the responsibility here?
है? जिनकी आदत पड़ी हुई है त्यागने की, हद तक संन्यास करने की, वो यहाँ नहीं छोड़ के चले जाएंगे.
Those who have a habit to renounce, to practice the limited renunciation, won't they run away leaving their responsibility here?
तो छोड़कर यहाँ आकर नहीं बैठ जाना है.
So you should not come and sit here after leaving the household.
घर बार छोड़कर यहाँ आकर के रहे, ऐसा कायदा नहीं है.
It is not the law to leave the household, come and live here.
घर बार बसाया है तो निभाना भी है.
If you have set up your household, you should also maintain it.
तुमको कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये ज्ञान उठाओ.
You are told, take this knowledge by living in the household life.
पहले की बात अलग है.
It was a different thing in the beginning.
पहले तो ये भट्टी बननी थी.
In fact, this भट्टी was to be organized in the beginning.
तो जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, नई जिम्मेवारी थी, वो सब छोड़ करके चले आए.
So all those who had a responsibility, those who didn't have any, they all left everything and came to Baba.
उनसे फिर इतने तैयार हुए.
Then so many became ready through them.
माना? पहले सिर्फ गृहस्थी ही आए या सन्यासी भी आ गए?
What does it mean? Did only the householders come first or did the sannyasis also come?
घर बार छोड़ने वाले भी आ गए या सिर्फ गृहस्थी ही आए? वो क्या नाम जो छूटेले थे जिनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी वो ही आए?
Did those who renounced their household also come or did only those who were free who did not have any responsibility come?
सब आ गए.
Everyone came.
क्योंकि सन्यासी भी तो फाउंडेशन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए?
It is because should the sannyasis also lay the foundation of their religion or not?
दुनिया तैयार हो रही है, दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, तो सन्यास धर्म में जाने वाली आत्माएं ही होंगी दुनिया में, आने वाली दुनिया में.
The world is becoming ready and the foundation of the world is being laid. So will there be only the souls who go to the sannyas religion in the world, in the forthcoming world?
या प्रवृत्ति मार्ग की ही पक्की आत्माएं होंगी.
Or will there be only the souls who firmly belong to the household path?
है? कौन होंगी?
Who will there be? Someone said, there will be both.
दोनों ही.
There will be both.
इसलिए ब्रह्मा की गोद में सब ने आकर के पालना ली.
This is why everyone came and took sustenance in the lap of Brahma.
और धर्मों के जो सन्यासी होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, तैस, इनको प्रवृत्ति मार्ग का कहेंगे या निवृत्ति मार्ग का कहेंगे?
The sannyasis of the other religions like Abraham, Buddha, Christ, will they be said to belong to the household path or to the path of renunciation?
निवृत्ति मार्ग.
They belong to the path of renunciation.
ये प्रवृत्ति को निभाने वाले नहीं.
They don't maintain their household at all.
तो निवृत्ति मार्ग वाले भी आ गए.
So those belonging to the path of renunciation also came.
क्योंकि सारी दुनिया का फाउंडेशन तो पढ़ना ही था.
बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड वॉज टू बी लेड एनी वे.
अब मैं आया हुआ हूँ प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए या निवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए.
नाउ हैव आई कम टू ले द फाउंडेशन ऑफ द हाउस होल्ड पाथ और ऑफ द पाथ ऑफ रिनंसिएशन. एवरीवन सेड द फाउंडेशन ऑफ द हाउस होल्ड पाथ.
मैं तो प्रवृत्ति मार्ग का ही फाउंडेशन डालने के लिए आया हूँ.
आई हैव कम टू ले द फाउंडेशन ऑफ ओनली द हाउस होल्ड पाथ.
इसलिए डायरेक्शन देता हूँ कि प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है.
दिस इज व्हाई आई गिव यू अ डायरेक्शन. यू शुड नॉट लीव द हाउस होल्ड.
प्रवृत्ति की जिम्मेवारी को धारण करते हुए ये ज्ञान उठाना है.
व्हाइल कैरिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड यू शुड टेक दिस नॉलेज.
बाकी जिनके ऊपर प्रवृत्ति की जिम्मेवारी नहीं है जैसे बहुत सी कन्याएं हैं.
एज फॉर द रेस्ट Those who don't have the responsibility of the household, for example, there are many virgins.
माँ बाप की भी कोई जिम्मेवारी नहीं.
They don't have any responsibility to take care of their parents either.
कन्याएं तो स्वतंत्र होती हैं.
Virgins are certainly free.
बहुत से कुमार ऐसे हैं जिनके परिवार में कई भाई हैं.
There are many kumars, that is bachelors like this. Who have several brothers in their family.
कमेरे हैं. माँ बाप की जिम्मेवारी खुशी खुशी उठाए रहे हैं.
They, that is the brothers, work and are happily taking the responsibility of their parents.
स्वतंत्र हैं तो उनको प्रवृत्ति का बोझ नहीं कहेंगे.
So they won't be said to have the burden of the household.
विधवा माताएं.
There are mothers who are widows.
उनको कोई बोझ है क्या? कोई बोझ नहीं.
Do they have any burden? They have no burden.
बच्चे बड़े बड़े हो गए तो कोई बोझ नहीं है.
If their children have grown up, they have no burden.
तो आगे की बात अलग थी.
So it was a different case in the beginning.
आगे तो इतने सब भट्टी में तैयार होने थे.
In the beginning, So many of them were to be prepared in the bhatti.
इनका बहुत अच्छा विस्तार है जो आज में बच्ची में निकले.
The expansion of those who came out, that is, became ready in the bhatti in the beginning is great.
अगर ये विस्तार नहीं होता, ये फाउंडेशन नहीं पड़ता, तो 500-700 करोड़ की शक्ति तैयार ही नहीं होती.
Hadn't there been this expanse, hadn't this foundation been laid, the world of the 5 to 7 billion, that is 500 to 700 crore souls, wouldn't have become ready at all.
हाँ, जो बाप के बन जाते हैं वो फिर अंदर के दास दासियां आदि बनते हैं.
Yes, those who belong to the father become servants, maids, etc. inside. That is in the royal family.
क्यों?
Why?
बन तो गए बाप के लेकिन संबंध तो बाप से जोड़ा लेकिन क्या गड़बड़ हो गया.
They did belong to the father, but they did form a relationship with the father, but then what went wrong?
हैं? कोई भी प्रकार की सेवा तो करते ही नहीं है.
They don't do service of any kind at all.
और ही disservice करते हैं.
They do even more disservice.
तो फिर वो क्या बनेंगे?
Then what will they become?
वो फिर दास दासी बन जाते हैं.
Then they become servants and maids.
तो दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है.
After becoming servants and maids for many births, in the end they receive a crown number wise, that is more or less important according to their purusharth, meaning spiritual effort.
पिछाड़ी में क्यों मिलता?
Why do they receive it in the end?
आखिर पढ़ाने वाला कौन है?
After all, who is the teacher?
जो बाप के बने एक बार सरेंडर हुए तो जिम्मेवार कौन हो गया?
Those who belonged to the father once and surrendered themselves, then who became responsible?
बाप जिम्मेवार हो गया।
The father became responsible.
तो बाप जिनका जिम्मेवार हो गया तो बाप छोड़ देगा उन्हें? नहीं।
So will the father leave those for whom he has become responsible? No.
कोई भी हालत में उन समर्पित होने वालों को ताज पतलून तो देना ही है।
Those who surrender themselves have to be definitely given honor and position under any circumstance.
अंतिम जन्म में लेंगे तो प्राप्ति कम है।
If they take it in the last birth, there are fewer attainments.
और आज के जन्म में लेंगे तो प्राप्ति ज्यादा है।
And if they take it in the births in the beginning, there are more attainments.
आज के जन्मों में दास दासी बनते रहे और अंतिम जन्म में जाके ताज पतलून मिल गया।
If they become servants and maids in the earlier births and receive honor and position in the last birth,
तो 63 जन्मों पर क्या असर पड़ेगा?
Then what will be the effect on the 63 births?
21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है।
The karmic accounts of the 63 births are also created on the basis of the 21 births.
तो जो दास दासियां बनने वाले हैं या कोई भी सेवा करने वाले नहीं हैं, वर्तमान में देखा जाता है।
So those who are going to become servants and maids or those who are not seen to be doing any service at present,
उनों को भी अंत में धारणा तो होनी ही है।
They too have to assimilate the study in the end anyway.
क्या? ईश्वर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की धारणा तो होनी ही है।
What? They have to assimilate the study that God teaches anyway.
और धारणा होगी तो जिम्मेवारी का ताज भी मिलेगा।
And when they have assimilated the study, they will receive the crown of responsibility as well.
आज से अंत तक वो प्रजा में आते रहें, ऐसे नहीं हो सकता।
It cannot happen that they keep coming in the subject category from the beginning till the end.
क्या कहा?
What was said?
किसकी बात हो रही है?
Whom are we speaking about?
जो समर्पित हो जाते हैं उनकी बात हो रही है कि बाप उनका जिम्मेवार है।
We are speaking about those who surrender themselves, that the father is responsible for them.
ज्यादा जन्मों में दास दासी बनेंगे लेकिन कौन से परिवार में बनेंगे?
They will become servants and maids for more births, but in which family will they become that?
राज परिवार की दास दासी बनेंगे।
They will become the servants and maids of the royal family.
साहूकारों के दास दासी?
The servants and maids of wealthy people, साहूकार, students, they will not become that.
साहूकार प्रजावर्ग में होते हैं या राज परिवार में होते हैं? प्रजावर्ग में।
Do the wealthy people belong to the category of subjects or the royal family? They are in the category of subjects.
तो साहूकारों के दास दासी नहीं बनेंगे।
So they won't become the servants and maids of rich people.
प्रजावर्ग के दास दासी नहीं बनेंगे।
They won't become servants and maids in the subject category.
राज परिवार के दास दासी बनते रहेंगे और फिर जब सुधरेंगे अंतिम जन्म में या अंत के पुरुषार्थ में,
They will keep becoming servants and maids of the royal family, and when they reform in the last birth or in the final purusharth,
आखरी सारी दुनिया में आवाज फैलेगी तो आंखें खुलेंगी या बंद रहेंगी?
Finally, when the voice spreads in the entire world, will their eyes open or will they remain closed?
आंखें खुल जाएंगी।
Their eyes will open.
समझ जाएंगे कि हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है?
They will understand who their teacher is.
हाँ, जो बाहर वाले हैं वो आकर के अंदर का नहीं बन सकते.
यस दोज हु आर द आउटसाइडर्स कांट कम एंड बिकम इनसाइडर्स.
माना राज परिवार में प्रजावर्ग की आत्माएं जो संदेश लेती हैं और फिर चली जाती हैं, वो प्रजावर्ग में तो आ जाते हैं.
इट मीन्स इन द रॉयल फैमिली द सोल्स ऑफ द सब्जेक्ट कैटेगरी हु गो अवे आफ्टर टेकिंग द मैसेज दे डू कम इन द सब्जेक्ट कैटेगरी.
वो आकर के राजघराने में दास दासी बनते रहे ये नहीं हो सकता.
बट इट कांट हैपन दैट दे कम एंड कीप बिकमिंग सर्वेंट्स एंड मेड्स इन द रॉयल फैमिली.
बल्लभाचारी बाहर वाले को कब अंदर नहीं आने देते हैं.
वल्लभाचारी दैट इज सेक्ट ऑफ ब्राह्मिन्स नेवर अलाउ आउटसाइडर्स टू कम इनसाइड.
कौन से आचार्य बताए? बल्लभाचारी.
विच आचार्य दैट इज फॉलोवर्स और बिलीवर्स वर दे सेट टू बी? वल्लभाचारी.
वल्लभ किसको कहा जाता है?
हु इज कॉल्ड वल्लभ?
गोपी वल्लभ. किसको कहा जाता है?
गोपी वल्लभ. हु इज कॉल्ड सो?
कृष्ण को कहा. वो तो कृष्ण को ही भगवान समझते हैं.
कृष्णा इज कॉल्ड सो. दे थिंक कृष्णा हिमसेल्फ टू बी गॉड.
अब कृष्ण की तो बात नहीं है.
नाउ इट इज नॉट अबाउट कृष्णा.
यहाँ तो शिव बाबा की बात है.
हियर इट इज अबाउट शिव बाबा.
ये सभी समझने की बातें हैं.
ऑल दीज आर थिंग्स टू अंडरस्टैंड.
और गीता ज्ञान भी एक सेकंड का है.
एंड द नॉलेज ऑफ द गीता ऑल्सो इज ऑफ अ सेकंड.
लंबी चौड़ी बात नहीं है.
इट इज नॉट समथिंग डिटेल्ड.
क्या है एक सेकंड का ज्ञान?
व्हाट इज द नॉलेज ऑफ अ सेकंड?
गीता का सार क्या है दो शब्दों में?
व्हाट इज द एसेंस ऑफ द गीता इन टू वर्ड्स?
मनमना भव. मेरे मन में समा जाए.
मनमना भव मीनिंग मर्ज इन माय माइंड.
कौन कहता है?
हु सेज दिस?
कहने वाला कौन है? शिव बाबा.
हु इज द वन हु सेज दिस? शिव बाबा.
तो शिव बाबा का मन है.
द शिव बाबा पजेस अ माइंड.
शिव बाबा का मन है? है अमन है.
Does Shiv Baba possess a mind? Does he? Student, he is Aman. Is he Aman? That is the one who does not possess a mind.
Shiv Baba ka bhi man hai.
Shiv Baba also possesses a mind.
Shiv Baba ki buddhi bhi hai. Practical mein hai.
Shiv Baba also possesses an intellect in practice.
Aur Shiv Baba mein sanskar bhi hai.
And there are sanskars in Shiv Baba as well.
नहीं तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहा जाता है?
Otherwise, why is it said त्रिमूर्ति शिव?
किसकी मूर्तियाँ? शिव की मूर्तियाँ.
Whose personalities? Shiv's personalities.
तो मनरूपी ब्रह्मा.
So the mind in the form of Brahma.
बुद्ध रूपी शंकर.
The intellect in the form of Shankar.
और विष्णु रूपी संस्कार शक्ति. ये तीन शक्तियाँ हैं.
एंड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ द पावर ऑफ द संस्कार्स आर द थ्री पावर्स.
भगवान की ही तीन शक्तियाँ हैं.
दे आर द थ्री पावर्स ऑफ गॉड हिमसेल्फ.
तीनों ही शक्तियाँ.
ऑल द थ्री पावर्स.
मन जिसे ब्रह्मा कहा जाता है जब संपूर्ण बनता है तो मन चलायमान रहता है या एकाग्र हो जाता है?
द माइंड विच इज कॉल्ड ब्रह्मा वेन इट बिकम्स कम्प्लीट डज इट रिमेन इनकॉन्स्टेंट और डज इट बिकम फोकस्ड?
जैसे तराजू का कांटा है.
फॉर एग्जाम्पल देर इज द नीडल ऑफ अ बैलेंस.
दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो एकाग्र होगा.
वेन बोथ द पैंस हैव इक्वल वेट इट दैट इज नीडल विल बिकम स्टेबल.
और कम ज्यादा हुआ तो हिलता डुलता रहेगा.
एंड इफ दे हैव अनइक्वल वेट इट विल बी अनस्टेबल.
तो ऐसे ही बैलेंस की पावर है.
सो लाइकवाइज देर इज द पावर ऑफ बैलेंस.
ये बुद्धि का काटा एकाग्र हो जाता है तो मन कंट्रोल आ जाता है.
When this needle of the intellect stabilizes, the mind comes under control.
तो बताओ, जो गीता एक सेकंड का ज्ञान है.
So tell me, the knowledge of the Gita that is of a second.
जिसके लिए कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, कितना टाइम लगता है?
For which it is said, Brahma becomes Vishnu. How much time does it take? Everyone said 1 second.
एक सेकंड लगता है ब्रह्मा को विष्णु बनने में.
It takes 1 second for Brahma to become Vishnu.
एक सेकंड लगता है तो ये 82 साल किस खाते में चले जाते हैं?
If it takes 1 second, how are these 82 years accounted for?
है? 70 साल तो हो गए.
70 years have already passed.
अब कितने बचे हुए ब्रह्मा को विष्णु बनने में?
Now, how many years are left for Brahma to become Vishnu?
अभी भी टाइम तो है ना?
There is still time, isn't there?
तो ये 82 साल जो निकल जाते हैं ब्रह्मा को विष्णु बनने में, किस खाते में जाते हैं?
So, these 82 years that pass away for Brahma to become Vishnu, how are they accounted for?
पढ़ाई पूरी होने में जाते हैं.
They pass away to complete the studies.
इसलिए बाप को ज्ञान सागर कहा जाता है.
This is why the father is called the ocean of knowledge.
क्या? कोई छोटा गद्दा गड़ीची नहीं है कि मशीन लगा दो और पानी खाली हो जाए.
What? He is not a small ditch or a pit that you fix a machine to take out its water and it becomes empty.
छोटा कुआं होता है.
For example, there is a small well.
कोई बड़ा या छोटा मकान होता है, उसमें अंडरग्राउंड में पानी भर जाए तो क्या करते हैं?
If the underground of a small or big house is filled with water, what is done?
मोटर लगाई और सारा पानी निकाल के बाहर कर दिए.
They fix a motor, that is a machine, and take out all the water.
तो ऐसे कोई गड्ढा गड़ीची नहीं है.
So he is not a ditch or a pit like this.
क्या है? ज्ञान का सागर है.
What is he? He is the ocean of knowledge.
तो क्या एक सेकंड में ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा?
So will the knowledge sit in the intellect in a second?
है? टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? टाइम लग जाता है.
Will it take time or not? It takes time.
हम यहाँ ही रहते हैं.
He keeps explaining now.
पिछाड़ी तक भी समझाते रहेंगे.
And he will keep explaining till the end as well.
माना?
What does it mean?
पिछाड़ी माना?
What does the end mean?
कब तक समझाते रहेंगे? पिछाड़ी माने कब?
Till when will he keep explaining? The end means when?
सन 36 तक.
Until the year 2036.
अरे कुछ हिसाब ही नहीं लगाया अभी तक.
2036 तक.
अरे didn't you make any calculation yet? Student, until 2026.
2036 तक समझाते रहेंगे.
पढ़ाई
He will keep explaining until 2026. Student, till when will the studies continue?
बताओ पढ़ाई कब तक के लिए?
Tell me, how long will the studies continue? Student, it takes 50 years for the studies to be complete.
50 साल पढ़ाएगी कब से?
It takes 50 years for the study to be complete from when? Student, from 76.
76 से 50 साल.
50 years from 76.
उसके बाद पढ़ाई बंद.
After that will the study stop?
पढ़ाई चाहे टीचर पढ़ाए और चाहे पढ़ाई मॉनिटर पढ़ाए.
Whether it is the teacher or the monitor who teaches the study.
टीचर 6 महीने की छुट्टी चला गया तो पढ़ाई बंद हो जाती है क्या? कि चालू रहती है? चालू रहती है.
Do the studies stop if the teacher takes a leave for 6 months or do they continue? They continue.
तो सुप्रीम सोल तो सुप्रीम टीचर है.
सो द सुप्रीम सोल इज द सुप्रीम टीचर.
लेकिन टीचर सुप्रीम टीचर आप समान किसी को बना के जाता है ऐसे ही चला जाता है.
बट डज द सुप्रीम टीचर मेक समवन इक्वल टू हिमसेल्फ बिफोर गोइंग और डज ही सिंपली गो अवे. स्टूडेंट ही गोज आफ्टर मेकिंग समवन इक्वल टू हिमसेल्फ.
किसको बना के जाता है.
Whom does he make equal to himself before going?
अरे किसी को बना के जाता है.
अरे does he make someone equal to himself before going?
किसको बना के जाता है.
Whom does he make equal to himself before going? Student, Prajapita.
जिसका नाम शिव के साथ एड कर दिया जाता है.
The one whose name is added to that of Shiv.
कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ.
दे से शिव शंकर भोलेनाथ मीनिंग लॉर्ड ऑफ द इनोसेंट वंस.
तो एक बच्चे की तो पढ़ाई है जिसके लिए बाप शिव रुके हुए हैं.
सो इट इज सर्टनली द टीचिंग फॉर वन चाइल्ड फॉर हुम द फादर शिव इज वेटिंग.
उस बच्चे की पढ़ाई होने के बाद फिर पढ़ाने वाले एक है या दो.
आफ्टर द स्टडीज ऑफ दैट चाइल्ड आर ओवर इज देर वन टीचर और आर देर टू टीचर्स.
प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं.
डू दे बिलोंग टू द हाउस होल्ड पाथ और द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन. एवरीवन सेड द हाउस होल्ड पाथ.
राम और कृष्ण सच्चे रूपी रंगमंच के माँ बाप हैं.
राम एंड कृष्णा आर द पेरेंट्स ऑफ द स्टेज लाइक वर्ल्ड.
और ये दो पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं.
एंड दीज टू आर द टीचर्स.
इनके द्वारा सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र है 500-700 करोड़ ब्राह्मणत्व की पढ़ाई सब पढ़ेंगे या कोई ब्राह्मण बनेंगे कोई नहीं बनेंगे.
थ्रू देम Will all the 5 to 7 billion human beings of this world study the study of Brahminhood, or will some become Brahmins and others won't?
हैं? चलो नीची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण तो बनेंगे.
It is all right if they become the Brahmins of lower category, but they will become Brahmins for sure.
ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं.
9 categories of the Brahmins are famous.
तो आस्तिक धर्म भी कितने हैं.
इन द सेम वे हाउ मेनी थीस्ट रिलीजन्स आर देयर.
9 धर्म हैं आस्तिक.
देयर आर 9 थीस्ट रिलीजन्स.
आर्य समाजियों को भी तो पूरा नास्तिक तो नहीं कहेंगे.
द आर्य समाजीज ऑल्सो दे विल सर्टनली नॉट बी कॉल्ड कम्प्लीट एथिस्ट.
निराकार को तो मानते हैं.
दे बिलीव एटलीस्ट इन द इनकॉर्पोरियल वन.
क्या साकार को नहीं मानते.
What? They don't believe in the corporeal one.
लेकिन साकार जब निराकारी स्टेज पकड़ लेता है तो मानते हैं या नहीं मानते. वो भी मानते हैं.
But when the corporeal one attains the incorporeal stage, do they accept him or not? They too accept him.
तो दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सब पढ़ाई पढ़ती हैं.
So all the 5 to 7 billion human souls that there are in this world study the knowledge.
तो पढ़ाई पिछाड़ी तक भी चलती रहेगी.
So the studies will continue even till the end.
पिछाड़ी माने? है? 2036 तक भी पढ़ाई चलेगी.
What does the end mean? The studies will continue even till 2036.
अब कोई पढ़े? या न पढ़े.
नाउ इट डजेंट मैटर वेदर एनीवन स्टडीज और नॉट.
जो संपूर्ण टीचर है वो तो संपूर्ण पढ़ाई के पढ़ा के जाता है.
द वन हु इज द कम्प्लीट टीचर सर्टनली टीचेस द कम्प्लीट स्टडी एंड गोज.
लेकिन जो संपूर्ण नहीं है सदैव आत्म की स्थिति में टिक करके नहीं रहता.
But the one who is not complete, the one who doesn't always remain stable in the soul conscious stage.
कौन?
Who?
कौन ऐसी आत्मा है जो संगम युग में सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट नहीं बजाती।
Which soul doesn't always play the role of Maryada Purushottam in the confluence age? Maryada Purushottam means the one who is the best among all the souls in following the code of conduct.
कोई है?
Is there anyone?
अरे?
अरे, student Krishna.
कृष्ण तो रहे हैं, Maryada Purushottam गायन ही नहीं है।
Krishna is not praised as Maryada Purushottam at all.
राम का गायन है?
This is the praise of Ram.
लेकिन राम वाली आत्मा भी अंतिम क्षणों में क्या बन जाती है?
But what does even the soul of Ram become at the final moment?
रावण बन जाती है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम है?
He becomes Ravan. So is he Maryada Purushottam? Everyone said no.
नहीं?
No.
तो बोला ऐसी भी आत्माएं निकलती हैं जो अंश मात्र भी पढ़ाई नहीं पढ़ती।
So it was said, such souls also come in knowledge who don't study even a little.
नास्तिक की नास्तिक ही रह जाती।
They remain just atheist.
उनको बाप का वर्षा नहीं मिल पाता।
They are unable to receive the inheritance of the father.
बाप का वर्षा क्या है? सुख और शांति का।
What is the inheritance of the father? Happiness and peace.
जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था को आ जाएगी। फिर नंबरवार ज्ञान पूरा हो जाएगा।
When the capital is established, when you attain the karmatit stage, meaning the stage beyond karma, then the knowledge will become complete accordingly.
किसका?
Whose?
जो भी राजाई प्राप्त करने वाले धर्म हैं, कौन कौन से हैं?
All the religions that obtain kingship, which are they?
जितने भी धर्म हैं, जिन्हें धर्म कहें, आस्तिक कहें, वो कितने धर्म हैं?
All the religions that can be called religion or theist, how many are they?
9 हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं, वो आस्था वाले तो हैं।
They are 9 religions. Those who become Brahmins certainly are the ones who have faith.
ब्रह्मा के बच्चे तो बनते हैं।
They do become the children of Brahma.
तो जो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, आस्तिक हैं, उन धर्मों को राजाई मिलेगी अंश मात्र या नहीं मिलेगी?
So those who become the children of Brahma, those who are theists, will those religions obtain even a little kingship or not?
राजाई तो मिलेगी, राजाई मिलेगी तो उनकी राजधानी भी तैयार होगी या नहीं होगी?
Definitely they will obtain kingship. If they obtain kingship, will their capital also become ready or not?
राजधानी तैयार होगी।
Their capital will become ready.
एक होती है निर्विकारी दुनिया की राजधानी।
One thing is the capital of the viceless world.
और एक होती है विकारी दुनिया की राजधानी।
And the capital of the vicious world is another thing.
निर्विकारी दुनिया की राजधानी तो जो सदा ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, वो स्थापन करता है।
The one who is always incorporeal, viceless and egoless establishes the capital of the viceless world.
फिर विकारी दुनिया की जो राजधानी है अनेक अनेक धर्मों में, उसका निमित्त कौन?
Then who is the instrument to establish the capitals of the vicious world in various religions?
कोई होता है वहाँ, नहीं होता है?
Is there anyone there or not?
कौन है?
Who is it?
अरे?
अरे स्टूडेंट, इट इज प्रजापिता हिमसेल्फ।
प्रजापिता को कहेंगे?
इट विल बी सेट टू बी प्रजापिता।
प्रजापिता ऐसा बीज है जो हर धर्म का फाउंडेशन लगाने वाला है, सारे जगत के हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार के जाति का फाउंडेशन लगाने वाला है।
इस प्रजापिता सच अ सीड हु लेज द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलीजन, the foundation of every kind of religion, every kind of kingdom of the entire world.
यह सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन लगाता है.
Or does he lay the foundation of just the ancient deity religion? Student, of every religion.
हर धर्म का फाउंडेशन.
He lays the foundation of every religion.
मान लो मुगल राज्य स्थापन हुआ.
For example, the Mughal Empire was established.
सैकड़ों साल भारतवर्ष में मुगलों ने राज्य किया.
The Mughals ruled the land of India for hundreds of years.
अब मुसलमानों का धर्म तो पहले ही स्थापन हो गया था.
Well, the religion of the Muslims was established well before.
कितने साल पहले स्थापन हो गया था?
How many years ago was it established?
मोहम्मद साहब जब आए तो मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ 1400 वर्ष पूर्व.
The Muslim religion was established when Prophet Muhammad came 1400 years ago.
हुआ ना?
It was established, wasn't it?
तो धर्म जब स्थापन होता है तो जनसंख्या ना के बराबर होती है.
So, when a religion is established, its population is next to nothing.
जब जनसंख्या ही नहीं है तो राजा ही किसके ऊपर होगी?
When there is no population at all, who will be ruled?
जनसंख्या ही नहीं है तो राजधानी काहे की बनेगी?
When there is no population at all, how will the capital be established?
तो 300-400 वर्ष के बाद जब उस धर्म की जनसंख्या लाखों की तादाद में हो जाती है.
So, after 300 to 400 years, when the population of that religion reaches lakhs, that is 100,000s,
तब राजाई का फाउंडेशन डालने के लिए राम वाली आत्मा और राम के साथ जो भी ग्रुप है वो सारा ही उस धर्म में जाके जन्म लेता है.
Then to lay the foundation of kingship, the soul of Ram and the group that is with Ram, all of them go and are born in that religion.
और उस धर्म की राजाई राजधानी स्थापन हो जाती है.
And the kingship and the capital of that religion is established.
जैसे मुगल सल्तनत है.
Just like in the case of the Mughal Empire.
तो उसका founder कौन हुआ?
Who was its founder? Student, Babar.
नाम ही drama play में अनुसार पड़ा हुआ है, Babar.
The very name given to him is Babar according to the drama plan.
क्या?
What?
नाम ही बाबा से पड़ा हुआ.
The very name is derived from the word Baba.
तो ये तो एक मिसाल हुआ.
So, this is just an example.
लेकिन इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, या कोई भी धर्म हो.
But whether it is the Islam religion, the Christian religion or any religion,
हर धर्म में राजाई स्थापन करने में पहला पार्ट सूर्यवंशी आत्माओं का है.
First of all, it is the part of the Suryavanshi souls, meaning souls belonging to the Sun dynasty, to establish the kingship in every religion.
सारी दुनिया सूर्य की औलाद है.
The people of the entire world are the descendants of the Sun.
सितारे हैं, चंद्रमा है, ग्रह उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, किससे रोशनी लेते हैं?
The stars, the moon, planets, satellites and heavenly bodies take their light from whom?
सूर्य से रोशनी लेते हैं.
They take their light from the sun.
हाँ, एक है ज्ञान सूर्य.
Yes, one is the sun of knowledge.
और एक है ज्ञान सदैव नहीं रहता है.
And the other is the one in whom the knowledge does not remain forever.
अंश मात्र कुछ न कुछ समय के लिए अज्ञानी भी बनता है.
He also becomes slightly ignorant for some time.
इसलिए दुनिया में कहावत है को सूर्य को किसने ग्रसा? राहु ने ग्रसा.
This is why there is a saying in the world, who swallowed the sun? Rahu swallowed it. Rahu, name of a demon supposed to seize the sun and the moon in his mouth and so to create eclipses.
अब वास्तव में ज्ञान सूर्य को तो कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता.
Now, no one can actually seize the sun of knowledge at all.
हाँ, जो सर्वशक्तिवान का टाइटल है, तो एक को मिला है, या दो को मिला है?
Yes, has one soul received the title Almighty, or have two souls received it?
है?
Students, two souls have received it.
कौन दो?
Who are those two souls?
माया को भी सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको भी सर्वशक्तिवान का टाइटल मिलता है.
माया has received the title of Almighty as well as the father of the human world receives the title Almighty.
टाइटल अलग बात है और असली अलग बात है.
A title is one thing and the reality is a different thing.
जैसे प्रिंसिपल है छुट्टी पे चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल का टाइटल मिल जाता है.
फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ प्रिंसिपल गोज ऑन हॉलीडे देन द वन हु टेक्स हिज सीट रिसीव्स द टाइटल वाइस प्रिंसिपल.
तो सदाकाल के लिए है क्या? नहीं.
सो इज इट फॉर एवर? नो.
तो ऐसे ही है कि हर धर्म की राजाई स्थापन करने के लिए अल्पकाल की राजाई प्राप्त कराने के लिए.
सो लाइक वाइज टू एस्टेब्लिश द किंगशिप ऑफ एवरी रिलीजन टू मेक देम अटेन शॉर्ट टर्म किंगशिप.
जो आत्मा निमित्त बनी हुई है वो आकर के राजधानी उस धर्म की टाइम टू टाइम स्थापन करती है.
द सोल हु हैज बिकम द इंस्ट्रूमेंट कम्स एंड एस्टेब्लिशेज द कैपिटल ऑफ दैट रिलीजन टाइम टू टाइम.
तो देखो हर बात समझनी पड़ती है.
सो लुक एवरीथिंग हैज टू बी अंडरस्टूड.
हाँ, ये कहेंगे हद के बाप से हद का वर्षा.
यस इट विल बी सेड दैट वी रिसीव अ लिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम द लिमिटेड फादर.
और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा.
एंड एन अनलिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर.
कौन हुआ हद का बाप?
हु इज द लिमिटेड फादर?
हद का बाप कौन हुआ?
Who is the limited father? Student, Abraham, Buddha, Christ are the limited fathers.
हाँ, जो हद का बाप है वो अल्पकाल की राजाई दे सकता है.
Yes, the one who is the limited father can give short term kingship.
और बेहद का बाप विश्व की बादशाही देता है.
And the unlimited father gives the emperorship of the world.
द्वापर युग से लेकर के और धर्मों की राजधानियां तो बनी, राज्य तो बने.
The capitals and kingdoms of the other religions were certainly established from the copper age.
लेकिन क्या विश्व की बादशाही किसी को मिली?
But did anyone receive the emperorship of the world? Student, no one received it.
तो क्या कहेंगे?
So what will be said?
वो बादशाही का वर्षा हद के बाप से मिला या बेहद के बाप से?
Did they receive that inheritance of the emperorship from the limited father or the unlimited father?
हद के बाप से मिला.
They received that from the limited father.
और अभी संगम युग में? संगम युग में कहेंगे बेहद का बाप.
And now what about the confluence age? In the confluence age, it will be said we receive it from the unlimited father.
भले यहाँ दो है बेहद के बाप.
Though there are two unlimited fathers here.
ये पहचान अभी होती है.
We recognize them now.
द्वापर कलयुग में बेहद के बाप की.
In the copper and the iron ages, the recognition of the unlimited father.
जो आत्माओं का बाप है उसकी पहचान होती है और जो न मनुष्यों का जो बाप है उसकी भी पहचान नहीं होती है.
We neither recognize the father of the souls. Nor do we recognize the father of the human beings.
ये अभी संगम युग में पहचान होती है आत्माओं का बाप कौन और मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप कौन.
Who is the father of the souls and who is the unlimited father of the human world? We recognize this now in the confluence age.
दोनों बाप जब इकट्ठे होते हैं तो विश्व की बेहद की बादशाही एक बाप से मिलती है.
When both the fathers come together, We receive the unlimited emperorship of the world from the one father.
इकट्ठे होते हैं तो एक हो गई पर्सनालिटी या दो हैं?
When they come together, did they become one personality or are they two personalities?
एक पर्सनालिटी है.
They are one personality.
तो जब विश्व के मालिक पने की बेहद की विश्व की बात सही मिलती है तो तुम सुख धाम में जाएंगे.
So when you obtain the unlimited emperorship of the world, the mastership of the world, you will go to the abode of happiness.
और बाकी सभी शांति धाम में जाकर बैठ जाएंगे.
And all the others will go to the abode of peace and sit there.
वहाँ सुख धाम में तो सुखी ही सुख होगा.
There will be happiness and only happiness there in the abode of happiness.
जो बेहद का सुख धाम है, बेहद का बाप देते हैं, जो वर्षा वहाँ सदैव सुख ही सुख होगा, अंश मात्र भी दुख नहीं होगा.
There will be nothing but happiness in the unlimited abode of happiness, which the unlimited father gives as the inheritance. There won't be the slightest sorrow.
और जो हद का बाप से वर्षा मिलता है राजाई का, उसमें सुख भी है तो दुख भी है.
And the inheritance of kingship that we receive from the limited father, there is happiness as well as sorrow in it.
अभी तुमको ये तो खातरी है कि बाप आए हैं.
Now you are sure that the father has come.
और हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग बल से.
And we are becoming the masters of the new world through the power of Rajyog.
क्या? हिंसा के बल से हम दुनिया के मालिक नहीं बन रहे.
What? We are not becoming the masters of the world through the power of violence.
हिंसा के बल से हम राजा ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं.
And we are not obtaining kingship through the power of violence.
नहीं तो द्वापर कलयुग में जो भी राजाइयां प्राप्त हुई हैं, जो भी राजा की गद्दी ली है.
Otherwise, in the copper and iron ages, all the kingships that were obtained, all the thrones of kings that were taken.
वो हिंसा के बल से ली है या अहिंसा के बल से, राजयोग बल से?
Were they taken through the power of violence or through the power of non-violence? Through the power of Rajyog? Students, through the power of violence.
योग का पता ही नहीं था.
They did not know yog at all.
राजाएं भी भोगी और प्रजा भी भोगी.
The kings were bhogi as well as the subjects were bhogi, meaning the one who seeks pleasure.
हिंसक राजाएं थे, हिंसा की राजाई अल्पकाल की राजाई है.
There were violent kings. Violent kingship is temporary kingship.
सारे विश्व के ऊपर कोई हिंसा के बल से राजाई प्राप्त नहीं कर सकता.
No one can obtain kingship over the entire world through the power of violence.
अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते.
अच्छा, रिमेम्बरेंस, लव, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग्स टू द स्वीट चिल्ड्रन. ओम शांति.